लगभग 3.5 साल बाद, खुराना मेंशन, मुंबई। सुबह के लगभग 7 बज रहे थे। आरव अपने रूम में आराम से सो रहा था, तभी उसके सिर पर जोर से अलार्म क्लॉक बजा। आरव ने अपना हाथ बढ़ाकर अलार्म बंद करना चाहा, तभी अलार्म का पोजीशन चेंज हो गया। वो राइट साइड से लेफ्ट साइड में चला गया। ऐसे लग रहा था जैसे उसे किसी ने पकड़ रखा हो। आरव ने फिर दूसरी तरफ हाथ बढ़ाया तो अलार्म क्लॉक उसके पैरों के पास चली गई। मजबूरन आरव को उठना ही पड़ा। रात को लेट सोने की वजह से उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी, इस वजह से वो इरिटेट हो रहा था। उसने सामने की तरफ देखा और सिर हिलाकर कहा, मैं उठ गया हूँ और आज संडे है, अब तो इसे बंद कर दो। अलार्म फिर भी बंद नहीं हुआ तो आरव को बेड से उतरना ही पड़ा। आरव बाथरूम की तरफ जाते हुए बोला, हाँ ठीक है, नहीं सोऊंगा बाथरूम में, लेकिन प्लीज इसे बंद कर दो वरना मेरा सिर दर्द से फट जाएगा। आरव के कहते ही अलार्म क्लॉक बंद हो गया तो उसने राहत की सांस ली। वो बाथरूम में गया और धीरे से बड़बड़ाकर बोला, पता नहीं कौन से जन्म की सजा मिल रही है कि मेरा बेटा मेरे जैसा ही है। मैं सब सुन रहा हूँ, बाहर से तेज आवाज आई। वो लगभग 4 साल का लड़का था जिसकी आंखें ओशन ब्लू कलर की थीं, बिल्कुल आरव की तरह। उसने गुस्से में अपनी आंखें घुमाई और अलार्म क्लॉक को साइड में रख दिया। पता नहीं मुझे ही इतने इरिस्पॉन्सिबल डैड मिलने जरूरी थे क्या। मैंने कल रात को ही बताया था आज मैं फ्रेंड्स के साथ में पिकनिक पर जाने वाला हूँ, फिर भी ये टाइम से नहीं उठे। कुछ देर बाद आरव बाहर आया तो वो बच्चा वहीं पर बैठा हुआ था। आरव उसके पास आया और उसे गोद में उठाकर कहा, ये एनी टाइम तुम्हारे नाक पर गुस्सा रहना जरूरी है क्या? मुझे याद था आज तुम्हें पिकनिक पर लेकर जाना है, मैं बस उठने वाला ही था आर्या। बहाने मत बनाइए, रोज यही होता है, मुझे स्कूल ड्रॉप करने कबीर अंकल जाते हैं ना कि आप, आर्या ने मुंह बनाकर जवाब दिया। आरव कुछ देर तक कुछ नहीं बोला तो आर्या ने मायूसी से कहा, आपको मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करना होता ना? ऐसा कुछ नहीं है, चलो नीचे चलते हैं, दादी हमारा वेट कर रही होगी, आरव ने उसे टालने के लिए कहा और फिर उसे नीचे लेकर गया। गौरवी जी अपने कमरे में थी और तैयार हो चुकी थी। वो अपने कमरे से बाहर निकल कर आईं तो उन्होंने आरव और आर्या को उनके रूम की तरफ आते देखा। उन दोनों को साथ में देखकर उनके फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई। गौरवी जी उनके पास गईं और आर्या का मुंह देखकर कहा, लगता है आज छोटू को फिर किसी बात पर गुस्सा आया है और इसके गुस्से का कारण तुम ही रहे होंगे। कमौन दादी, अब क्या मैं सबके गुस्से का कारण रहता हूँ? इस छोटे से 4 साल के बच्चे के गुस्से का कारण तो बिल्कुल नहीं हूँ, आरव ने सिर हिलाकर कहा। फिर उसने आर्या की तरफ देखकर पूछा, क्या तुम मुझसे गुस्सा हो आर्या? आर्या ने हाँ में सिर हिला दिया तो आरव ने गहरी सांस लेकर छोड़ी। उसने आर्या की तरफ देखकर सीरियस टोन में पूछा, अच्छा ठीक है, आज पूरा दिन मैं तुम्हारे साथ स्पेंड करने वाला हूँ, अब तो खुश हो जाओ, पूरे दिन मुंह बनाकर रखते हो, बिल्कुल अपनी मॉम, आरव बोलते हुए रुक गया। इससे पहले कि वो इमोशनल होता, उसने अपनी इमोशंस को काबू किया और आर्या को डाइनिंग टेबल की तरफ ले जाने लगा। गौरवी जी समझ गई थी आरव क्या कहना चाह रहा था, उनकी आंखें नम होने लगी। उन्होंने अपने मन में बड़बड़ाकर कहा, अब कैसे बताऊं मैं आर्या को कि उसका डैड उसके साथ टाइम स्पेंड इसीलिए नहीं करना चाहता क्योंकि उसकी आदतें बिल्कुल आयु जैसी हैं, उसके गुस्से करने का तरीका, उसकी स्माइल, काफी कुछ चीजें। जब भी आरव उसे देखता होगा तो उसे आयु की याद आती होगी। प्यार कितना भी रहा हो लेकिन आरव इस बात को कभी नहीं भूल सकता कि आयु की वजह से हमारी आर्या की जान चली गई। आर्या की कमी महसूस ना हो तभी आरव ने आरव्य का नाम बदलकर आर्या रख दिया। गौरवी जी वहां खड़ी थी तभी आरव ने तेज आवाज में कहा, दादी अब क्या पूरा दिन वहीं खड़े रहकर बिताने का इरादा है? आज आप भी हमारे साथ टाइम स्पेंड करने वाली हैं तो सारे काम भूल जाइए और इधर आइए। गौरवी जी ने अपनी आंखें साफ की और जल्दी से उनके पास गईं। उनके आते ही आरव ने आर्या से पूछा, अच्छा बताओ और तुम्हें क्या चाहिए? आज तुम जो मांगोगे तुम्हें वो सब मिल जाएगा, पक्का प्रॉमिस ना? आप हर बार यही कहते हो और बाद में कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देते हो, आर्या ने उसकी तरफ तिरछी निगाहों से देखते हुए पूछा। आरव ने बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिलाया तो आर्या बोला, ओके तो हमारी पिकनिक में अयान अंकल, साक्षी आंटी, रायशा बुआ, कबीर अंकल, युवानी आंटी, ये सब भी आने चाहिए। ये तो चीटिंग हुई ना आर्या, तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें मेरे साथ टाइम स्पेंड करना है और अब तुम्हें वो लोग भी चाहिए। ऐसा करते हैं उन्हें बुला लेते हैं और मैं अपना काम कर लूंगा, आरव ने जवाब दिया। आरव के मना करने पर आर्या का मुंह उतर गया, वो आगे कुछ नहीं बोला और उठकर अपने कमरे में जाने लगा। आरव ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन आर्या जा चुका था। आरव ने फिर उसे रोका नहीं, उसने गौरवी जी की तरफ देखा तो वो उससे बोली, वो बच्चा है। हाँ ये वो बच्चा है जिसे मुझे जानबूझकर तंग करने में मजा आता है, अभी कितना मासूम बन रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा संडे के दिन ही इसकी मासूमियत कैसे जागती है, वरना तो मुझे हर रोज इसके स्कूल में जाना पड़ता है, इसकी शरारतों के आगे मैं तंग हो गया हूँ, मैं इसे नहीं संभाल सकता अकेले, आरव चिढ़ते हुए बोला। आर्या इस वक्त जितना मासूम बनने की कोशिश कर रहा था वो इतना सीधा भी नहीं था। आर्या अपने कमरे में आया और गहरी सांस लेकर छोड़ी। उसके फेस पर ईविल स्माइल थी। आयान अंकल ने कहा था मैं अपनी मॉम जैसा लगता हूँ, तो मॉम की तरह रिएक्ट करना होगा, तभी डैड उन्हें वापस लेकर आएंगे। कैसे अजीब डैड है मेरे, मैंने इतना ड्रामा कर लिया फिर भी कोई असर नहीं हो रहा इन पर। ये इतना गुस्सा है क्या मॉम से, मुझे उनकी फोटो तक नहीं देखने देते हैं। खुद की शक्ल देखकर ही सेटिस्फाई होना पड़ता है कि मैं थोड़ा सा अपनी मॉम जैसा लगता हूँ, आर्या बोला और फिर आईने के सामने खड़ा हो गया। वो खुद को हर एक एंगल से खड़े होकर देख रहा था। कुछ देर खुद को देखने के बाद आर्या बोला, लगता है डैड ऐसे नहीं मानेंगे, उन्हें अच्छा खासा टॉर्चर करना पड़ेगा। बोलते हुए आर्या ने अपने ड्रॉअर में से मेडिकल किट निकाली और बिल्कुल किसी डॉक्टर की तरह तैयार हो गया। आर्या फिर बाहर आया और आरफ के सामने आकर बोला, डैड मुझे आपके साथ डॉक्टर डॉक्टर खेलना है, आपने कहा था कि आप मेरे साथ टाइम स्पेंड करोगे, मैं बड़ा होकर एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, वैसे भी हमारे पास खुद का हॉस्पिटल है तो मैं भी वहाँ का काबिल डॉक्टर बनूंगा, चलिए प्रैक्टिस अभी से शुरू करते हैं, आई एम डॉक्टर आर्या खुराना। बोलते हुए आर्या बाहर जाने लगा और उसने चिल्लाकर कहा, कम ऑन डैड जल्दी बाहर आइए, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। उसकी हरकतों से आरव वैसे भी परेशान था और इस बार तो उसने हद कर दी थी। आरव ने गौरवी जी की तरफ देखकर कहा, सीरियसली दादी अब ये जानबूझकर मुझे टॉर्चर कर रहा है, ये कोई मासूम बच्चा नहीं है, आपको समझ क्यों नहीं आता है, ये मेरा बेटा है तो मासूम कैसे हो सकता है, आरव बच्चों की तरह चिल्लाकर बोला। तभी फिर से आर्या के चिल्लाने की आवाज आई, वो उसे बाहर बुला रहा था तो मजबूरन आरव को उसके पीछे जाना ही पड़ा। लीप के बाद का पार्ट कैसा था?